ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का वैसे तो लास्ट नहीं कहेंगे, लेकिन आज लास्ट सेशन, मेडिटेशन सेशन हमारे आदरणीय दीपा दीदी जो संबलपुर ओडिशा से हैं वो लेने वाले हैं। आपने इतने दिनों दीदी के इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे आवाज में गीत सुने, तो उसके लिए दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही में आज हम कर्म फिलोसॉफी के ऊपर सुनेंगे, उसके पहले दीदी का स्वागत बैच और तुलसी के पौधे से करेंगे।
थैंक यू अश्विनी बहन। अश्विनी बहन हमारे, आप देख रहे होंगे जब से कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ है ना, तब से जितने सत्र भी आयोजन किए गए हैं, सभी स्पीकर्स का, मेहमानों का वेलकम करना, सारा स्टेज को अरेंज करना, सारी सेवाएं लास्ट तक बाबा कराने वाला है, लेकिन उन्होंने बहुत ही प्यार से ये सेवा जिम्मेवारी निभाई, इसलिए अश्विनी बहन का स्पेशल थैंक्स। वैसे तो यहाँ पर आप सभी जब से आए हैं तब से देख रहे होंगे, जो भी भाई बहनों की जो भी जिम्मेवारी है, चाहे साउंड पे है, हॉल में है, सभी बहुत ही प्यार से परमात्मा के कराने वाला तो परमात्मा है, शिव बाबा है, लेकिन करणहार हम माध्यम है ना उनके, तो करणहार बनकर सभी अपनी अपनी सेवाएं कर रहे हैं, है ना। हम इसको क्या कहते हैं, सेवा। यही चीजें जब हम दुनिया में करते हैं बाहर, तो हम कहते हैं मेरा ये काम है, मुझे ये करना है, मेरी ये जिम्मेदारी है, लेकिन उसी को जब हम क्या कहते हैं, सेवा कहते हैं, तो काम, वो भी काम ही होता है, कर्म ही होता है, एक्शन होता है, है ना। लेकिन उसमें क्या ऐड हो जाता है, क्या ऐड हो जाता है, आप लोग भी अपने अपने प्रोफेशन में हैं, तो आपको भी अपनी बहुत सारी कॉलेजों में रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाते होंगे, टीचिंग तो करते ही होंगे, साथ साथ और भी दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना। लेकिन कर्म और सेव, माना जब हम उसको काम कहते हैं और फिर उसको सेवा कहते हैं, उसको सेवा का नाम देते हैं, है वो भी कर्म, लेकिन कर्म सेवा में कन्वर्ट होता है, कब, हाँ जी, जब उसको हम प्रेम से करते हैं, और जी, हाँ, कर्तव्य काम सेवा कब कन्वर्ट हो जाता है, सेवा कब बन जाता है, वेरी गुड, भगवान का है, हम सिर्फ माध्यम है, उसका काम है, हम सिर्फ मेडिएटर है, ट्रस्टी जिसको कहते हैं, ट्रस्टी बन के करना, और जब वो समर्पण भाव आ जाता है ना, सब कुछ उसको सौंप देते हैं। गीता में भी आपने सुने होंगे, कर्मण्ये वाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करते चलो, कर्म के फल की आशा नहीं रखो, है ना। तो वही कर्म जब इस भाव से हम करते हैं तो वो सेवा बन जाता है, और सेवा बन जाता है तो फिर रिजल्ट क्या होता है, जब हम काम समझ के करते हैं तो कैसा महसूस होता है, और सेवा समझ के करते हैं तो कैसा महसूस होता है। हाँ, वो तो स्टार्टिंग का पार्ट हो गया कि काम में आपका प्यार, दिल की भावनाएं, समर्पण भाव, ट्रस्टी वाला भाव ऐड होता है, तो वो कर्म सेवा बन जाता है, फिर रिजल्ट क्या होता है, मेवा मिलती है। कहते हैं सेवा करो तो मेवा मिलेगी, है ना। कर्म समझ के करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा भारीपन अनुभव होता है, बोझ अनुभव होता है ना, और फिर करने के बाद भी उतनी संतुष्टि, उतनी खुशी उसमें नहीं मिलती जब आप सेवा समझ के करते हैं, है? सेवा समझ के करेंगे तो एक तो भारीपन का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उसका सब उसका है, हम सिर्फ माध्यम है ना, भारीपन का अनुभव भी नहीं होगा, और साथ में क्या होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगी, खुशी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी, है ना। तो आज हम कर्म के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, समझेंगे, और कई बातों को परिवर्तन करने का प्रयास भी करेंगे। तो इस बात से मेरा आप सभी को कहना ये था कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो काम हो रहा है वही सिर्फ सेवा है। आप भी अपने स्थान पर जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे आपकी टीचिंग है, कॉलेज में आप टीचिंग कर रहे हैं, या जो भी जिम्मेदारियां निभाते हैं, घर की जो जिम्मेवारियां हैं, उन सबको भी हम सेवा समझ के कर सकते हैं, उन सबको भी सेवा में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करके? उसमें थोड़ा सा प्यार है ना, थोड़ा सा समर्पण भाव है ना। जैसे आप घर में हैं तो जब आप अपने रोल में आ जाते हैं कि मैं माँ हूँ या मैं किसी की पत्नी हूँ, तो मेरे को घर के ये काम करने हैं, है ना, तो वो कर्म का भान आ गया। लेकिन वहीं पे जब आप सोल कॉन्शियस होकर करते हैं, हमने पहले दिन से आत्मा के बारे में जाना कि हम सभी कौन हैं, आत्माएं। कैसी आत्माएं हैं? बिंदु स्वरूप आत्माएं हैं, पर कैसी आत्माएं हैं? लवफुल सोल है, पीसफुल सोल है, पावरफुल सोल है, हैप्पी सोल है, खुशनुमा आत्मा है, खुशनुमा आत्मा, खुशनुमा आत्मा है ना, हैप्पी सोल है, खुशनुमा आत्मा है। तो एक सत्वगुणी आत्मा है। सातों गुणों के बारे में बताया ना, सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान शक्ति पवित्रता, सातों गुणों से भरपूर सत्वगुणी आत्माएं है ना। तो इस कॉन्शियसनेस से जब हम वो कर्म करते हैं कि मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, परमात्मा ने मुझे ये रोल दिया है, किसी की माँ का रोल दिया है, किसी की पत्नी का रोल दिया है, किसी के पिता का रोल दिया है, ये रोल दिया है। और ये रोल समझ के जब आप उसी कर्म को करेंगे तो वही कर्म फिर सेवा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आप सोल कॉन्शियस होकर वो कर रहे हैं तो उसमें, उस कर्म में भी सोल के जो वर्च्यूज हैं, शांति है, प्रेम है, आनंद है, खुशी है, ये कर्म में उस वो गुण प्रवाहित होंगे, उसमें दिखाई देंगे, है ना। आई एम ए लवफुल सोल, इस भाव से जब उसी चीज को करेंगे तो उस कर्म में प्यार दिखाई देगा। आई एम ए पीसफुल सोल, इस भाव से जब करेंगे तो उसी कर्म में शांति के वाइब्रेशंस फील होंगे। आप जहां पर भी रहेंगे वहां पर शांति का वाइब्रेशन बन जाएगा, है ना। तो ये तो हम कर्म और सेवा के बारे में समझ रहे थे, फिर हम थोड़ा बेसिक लेवल से भी समझेंगे। थोड़ा सा एक मिनट साइलेंस में बैठते हैं, थोड़ा अपने सामान जो भी पकड़े हैं थोड़ा साइड में रख दीजिए, और सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे। आपके अपने जीवन को देखिए, यहां आने से पहले आपका जीवन कैसा चल रहा था, सुबह से शाम तक की दिनचर्या, सुबह उठना, अपने रोज के काम, जिम्मेदारियां निभाना, अपने वर्क प्लेस पे जाना, वहां की जिम्मेवारियां निभाना, फिर शाम को घर पे आके घर की, फिर से घर की जिम्मेदारियां। जस्ट रिफ्लेक्शन। अब वहां पर चेक कीजिए कि आज आप किस भाव से उस कर्म को कर रहे थे आज तक। अपने आप को चेक करें, कौन से भाव से कर रहे थे। फिर स्वयं को देखें कि अपने घर में या कर्म क्षेत्र में आप जिनसे भी मिलते कौन से भाव से मिलते, किस भाव से सभी से मिलते थे। उसमें रोल कॉन्शियसनेस था, संबंध थे, क्या सभी के प्रति एक जैसा भाव था, या किसी के प्रति रिस्पेक्टफुल भावनाएं थी तो कभी किसी के प्रति मन में डिसरेस्पेक्ट भी आता था, उसको चेक कीजिए। रिलैक्स। चेक किया सभी ने कौन से भाव से कर्म करते थे। रोल कॉन्शियस होकर करते थे, सभी के प्रति एक जैसी भावनाएं थी या अलग अलग भावनाएं थी। अलग अलग भावनाएं थी, किसी के प्रति रिस्पेक्टफुल भी होते थे तो कभी किसी के प्रति डिसरेस्पेक्ट भी होता था। आपने कभी ऐसा नोटिस किया आपने रोल पे कि जैसे हम घर में सभी से मिलते हैं या अपने वर्क प्लेस पे भी मिलते हैं, तो मान लीजिए आप किसी एक ऑफिस में जा रहे हैं तो आप ऑफिस में एंटर करते समय सिक्योरिटी गार्ड होंगे, उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा होता है, आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है, हंसते हुए होता है। उसके बाद फिर आप उसी ऑफिस में किसी और दूसरे स्टाफ से मिलते हैं, उनके साथ कैसा होता है। फिर उसी ऑफिस के जो हेड होते हैं, मान लीजिए आप कलेक्टर के पास गए तो कलेक्टर ऑफिस में गए तो वहां पर आप सिक्योरिटी गार्ड से मिले, फिर किसी और स्टाफ मेंबर से मिले, फिर कलेक्टर से मिले, क्या तीनों के साथ एक जैसा बिहेवियर हमारा होता है? डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंस होता है? रेस्पेक्ट का। देखिए यहाँ पे दो चीज आती है, एक होता है रिगार्ड और दूसरा होता है रिस्पेक्ट। जैसे रिगार्ड वहां पर होता है अपने उम्र के हिसाब से या औहदे के हिसाब से किसी के प्रति हम अपने किसी स्पेशल बिहेवियर को प्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आया तो आप उनके सामने झुकेंगे, आपसे उम्र में जो बड़े हैं आप उनके सामने झुकेंगे, है ना, ये रिगार्ड है, बड़ों के प्रति रिगार्ड रखना। फिर जो आपसे औहदे में बड़े हैं तो उनके प्रति भी आपका रिगार्ड होता है कि कोई बड़ा आ गया तो आप बैठे हैं तो आप उठ जाते हैं, है ना, इस प्रकार का रिगार्ड होता है। तो आप किसी को रिगार्ड देते हैं, आपको भी कई रिगार्ड देते होंगे, आपसे जो छोटे हैं वो आपको रिगार्ड देते होंगे। कभी हम किसी के लिए दरवाजा खोलते हैं तो कभी कोई हमारे लिए भी खोलता है, ये रिगार्ड है। तो रिगार्ड सभी के साथ हमारे अलग अलग हो सकते हैं। आपको सिक्योरिटी गार्ड है, कलेक्टर है, दोनों के साथ रिगार्ड अलग अलग हो सकता है, लेकिन अंदर की जो भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्योंकि अब हमने क्या जान लिया, अब हमने किस बात को समझ लिया कि हर रोल के पीछे एक बहुत ही लवफुल, पीसफुल, पावरफुल सोल है, है? आत्मिक दृष्टिकोण से सब कोई एक जैसे हैं। जेंडर अलग हो सकता है, रोल अलग हो सकते हैं, उम्र अलग हो सकती है ना, किसी का ओहदा अलग हो सकता है, लेकिन ये सब चीज क्या है? रोल है। और हर रोल के पीछे जो सोल है वो सबकी एक ही जैसे है ना। जैसे मान लीजिए किसी ड्रामा में, किसी ड्रामा में आप और आपकी एक दो फ्रेंड रोल प्ले कर रहे हैं, है ना, रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपने ऐसा भी रोल हो सकता है कि आपको हीरो का रोल मिला हो, उसको विलन का रोल मिला हो, है ना, ऐसा भी होता है, आपको हीरो का रोल मिला, उसको विलन का रोल मिला हो। तो ड्रामा में क्या करेंगे, फाइटिंग का सीन है तो फाइट तो करेंगे, अगर उसको एक थप्पड़ लगाना होगा तो थप्पड़ लगाएंगे, लेकिन क्या आपकी मन की भावनाएं अपने फ्रेंड के प्रति बदलती है क्या? नहीं बदलेगी, क्योंकि आपको ये सत्य पता है कि उस विलन वाले रोल के पीछे मेरा एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा दोस्त है ना? तो ये है डिफरेंस, सोल कॉन्शियसनेस रोल कॉन्शियसनेस वाले कर्म। आप वहां पर फाइट करेंगे, लेकिन जैसे ही रोल पूरा होगा फिर आके एक दोनों एक साथ बैठेंगे, चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, करेंगे ना, है ना? रोल प्ले करते समय भी ये कॉन्शियसनेस आपको अंदर में रहता है कि ये मेरा फ्रेंड है। आपका एक ऐसा सीन हो को आपको उसको मारना है, मर्डर भी करना है, तो सही में मर्डर करेंगे क्या? वो जस्ट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उसके पीछे मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है ना? ऐसे ही मान लीजिए कोई ऐसा रोल मिला हो जिसमें वो आपका बॉस हो, आप एक जूनियर रोल प्ले कर रहे हैं, है ना? तो उस रोल के हिसाब से आप वहां पे रिस्पेक्ट, मैंने आप उसको चेयर पे बिठाएंगे, रिगार्ड देंगे, है ना? और कोई ऐसा फ्रेंड, एक आपकी एक दूसरी फ्रेंड हो जो आपसे छोटा रोल प्ले कर, एक पियोन का रोल प्ले कर रही है ना, तो हो सकता है वहां पे आपका जो बर्ताव है वो अलग होगा, लेकिन मन में रिस्पेक्ट कम होता है क्या उसके प्रति? नहीं, क्योंकि आपको ये सत्य पता है कि उस रोल के पीछे मेरी एक अच्छी सी फ्रेंड है। ये भी फ्रेंड है जो हायर रोल प्ले कर रही है, बड़े ओहदे में रोल प्ले कर रही है, और ये भी फ्रेंड है जो पियोन का रोल प्ले कर रही है। जैसे ही रोल पूरा होगा फिर तीनों एक साथ सब कुछ करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, है ना? तो सेम चीज, ये विश्व भी एक वर्ल्ड ड्रामा है ना? आपने पहले दिन आपने आत्मा का पाठ पढ़ा, दूसरे दिन परमात्मा का, तीसरे दिन कल मेडिटेशन का था, राइट? कनेक्शन। अब हमारा ब्रह्मा कुमारी का 7 डेज का कोर्स होता है, ये तो यहाँ 3 दिन का है, तो उसमें नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो है वर्ल्ड ड्रामा, कि सृष्टि पर हम सभी ये वर्ल्ड एक बहुत बड़ा विश्व नाटक है, और हम सभी आत्माएं शरीर रूपक वस्त्र धारण करके अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब आत्मा के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, ऐसा तो नहीं है कि यहां आकर सुने हैं, पहले भी सुना होगा, यहां आकर थोड़ा ज्यादा उस पर सुन रहे हैं, और आपको उसको प्रैक्टिस भी कराया जाता है मेडिटेशन के टाइम पे। तो अब हमारे अंदर कोई परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आप पास्ट 3 दिन को अब फिर से साइलेंस में बैठते हैं और लास्ट 3 डेज को रिफ्लेक्ट कीजिए कि हमने इस बात पर गहराई से चिंतन किया, सुना और महसूस किया। कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, पीसफुल सोल। लवफुल सोल। पावरफुल सोल। तो इस प्रैक्टिस से लास्ट 3 डेज की दिनचर्या में मैंने जो भी कर्म किया, सेशन से निकलने के बाद लोगों से मिले, आपस में बातचीत हुई, भोजन करने के लिए गए, रूम में साथ में रहे, अब मेरा बिहेवियर दूसरों के साथ कैसा है, क्या मैं सोल कॉन्शियस होकर सभी से मिल रही हूं, बातचीत कर रही हूं, क्या मेरी ट्रू नेचर पीस लव पावर मेरे बोल में, मेरे कर्म में रिफ्लेक्ट हो रही है? चेक कीजिए, रिलैक्स। तो कोई परिवर्तन आया लास्ट थ्री डेज में? कुछ आया बोल में, कर्म में, दूसरे सब जब मिलते हैं तो कोई परिवर्तन आया? कर्म करते समय जब आप लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग पे जाते हैं या रूम में बात करते हैं, तो कितना, मतलब हो सकता है परसेंटेज में डिफरेंस हो, किसी को 5% हो, किसी को 10% हो, लेकिन क्या सोल कॉन्शियसनेस फील होता है? हुआ कितना परसेंट? 5%, 10%? क्योंकि कई बार हमको बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने की बहुत लंबे समय की हैबिट है ना, तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत लंबे समय की प्रैक्टिस है ना उसकी, तो इस सोल कॉन्शियसनेस को नेचुरल नेचर बनाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ वो लव हैप्पीनेस हमारे बोल में, कर्म में रिफ्लेक्ट हुआ। ओके, वेरी नाइस। तो अगर इस यात्रा को हम कंटिन्यू रखते हैं, हम हर रोज थोड़ा समय सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करते हैं और परमात्मा सुप्रीम एनर्जी से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं और अपने आप को लव पीस हैप्पीनेस ब्लीस पावर से भरते हैं, तो धीरे धीरे हमारा हर कर्म, हमारे कर्मों में उसका रिफ्लेक्शन का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। फिर जीवन कैसा बन जाएगा? ब्यूटीफुल बन जाएगा ना, है ना? वो जीवन कैसा होगा जब हमारे हर विचार में, वाणी में, हर कर्म में ना प्रेम भरा हुआ हो, शांति झलकती हो, खुशी झलकती हो, तो जीवन कैसा बन जाएगा? देवी देवताओं जैसा बन जाएगा ना? वही तो लक्ष्य है हमारा, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य यही है कि अपने को मनुष्य से देवता जैसा बनाना, और उसकी बेसिक प्रैक्टिस और बेसिक इसका जो फाउंडेशन यही से शुरू होता है, सोल कॉन्शियसनेस। जितना सोल कॉन्शियस होकर हम कर्म करते हैं, उतना धीरे धीरे हमारे आत्मा की जो नेचर, जो इनएक्टिव हो गया था क्योंकि हम खुद को भूल गए थे, तो खुद के गुणों को भी भूल गए थे कि मैं शांत स्वरूप हूँ। हम कहने को कई बार ऐसे कह देते हैं ना कि ये तो मेरी नेचर है, मुझे थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा आ जाता है, या थोड़ा ये ऐसा करने से ना मेरे को थोड़ा चिड़चिड़ापन फील होता है, कि सिचुएशन ऐसी होती है तो मेरे को गुस्सा आ जाता है, होता है कभी कभी ऐसे कहते हैं। तो हमने क्या किया था, हमने सोल की नेचर को अपनी नेचर ना समझकर, जो टेम्पररी नेचर बॉडी कॉन्शियस वाली नेचर को अपनी नेचर ये स्वीकार कर लिया था ना कि मेरी नेचर है। लेकिन अब हमारी नेचर क्या है? शांति है, प्रेम है, खुशी है, आनंद है, शक्ति है। तो अब से ध्यान रखेंगे, एक बात नोट कर लीजिए कि कभी भी ऐसे शब्द और कभी नहीं कहेंगे कि मेरे को ना गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, ये तो मेरी नेचर है। ऐसे कोई भी गलत नेचर को, गलत हैबिट को मेरी नेचर कहकर मुख से भी कभी नहीं बोलना, क्योंकि जो चीज़ हम मुख से भी कहते हैं ना, तो जरूर माइंड को भी कमांड जा रहा है। शब्दों का भी तो इफेक्ट है ना, जो मन में है वो शब्द में आते हैं, और जो शब्द हम बार बार बोलते हैं उसका इफेक्ट भी मन पे होता है, है ना? तो ये अब एक अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए कि अपने लिए कभी भी कोई गलत शब्द नहीं कहना है, कि मुझे गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, या मेरे को टेंशन हो जाती है, ऐसे भी कह लेते हैं ना, तो ये शब्दों को उच्चारण नहीं करना। क्या कहेंगे? मेरी नेचर क्या है? मैं शांत रहती हूँ, कोई कुछ भी कहे मैं सदा खुश रहती हूँ, कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे लेकिन मैं हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ, ये कहना है, खुद को भी कहना है और मुख से भी कहना है, क्योंकि जो हम बोलेंगे वैसा फिर धीरे धीरे हम बन भी जाएंगे। हो सकता है अभी वो एकदम डेप्थ नेचर ना बनी हो, लेकिन बन जाएगी, बोलते बोलते भी बन जाएगी, है ना? तो जब हम सोल कॉन्शियस होकर कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म हमेशा सुकर्म ही होता है, सत्कर्म ही होता है। कोई भी कर्म सिंपल, आप टीचिंग भी दे रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, लेकिन सोल कॉन्शियस होकर पढ़ाएंगे। ये आत्माएं हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये भी सोल है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट्स को कहीं पे आप हिदायत नहीं देंगे या कहीं पे कोई गलती करता है तो आप उसको शिक्षा नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं है। शिक्षा देंगे लेकिन प्यार से, कहीं पे थोड़ी सख्ती से पेश आना पड़े तो उस रोल को अवश्य प्ले कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति शांत हो, यहाँ पे गुस्सा या चिड़चिड़ापन ना आए। होता है ना, स्टूडेंट से भी चिड़चिड़ापन आ जाता है, पढ़ाते हैं कॉलेज में तो, है ना, उनकी एक्टिविटियाँ बार बार कोई चीज बोल रहे होंगे और वो नहीं मान रहे होंगे तो फिर आपको गुस्सा आ जाता है, है ना। घर की सिचुएशन तो अलग है, पर कॉलेज में स्कूलों में भी तो ऐसा ही होता है ना, क्या बार बार रिपीटेडली बोल रहे हैं लेकिन वो आपकी बात सुन ही नहीं रहे। तो भी यहाँ की स्थिति को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि कब डिस्टर्ब नहीं होगी, जब आप उनको सोल के दृष्टिकोण से देखेंगे कि वो भी हर एक आत्माएं हैं और वो भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हो सकता है आपका हीरो का रोल है तो उनका विलन का रोल है, रोल को एक्सेप्ट करना है, लेकिन उस रोल के पीछे एक शुद्ध पवित्र आत्मा है। रेस्पेक्ट हमेशा होना चाहिए, चाहे कोई उम्र में छोटा है, बड़ा है, कोई छोटी रोल प्ले कर रहा है, या ना कोई सिक्योरिटी गार्ड का रोल प्ले कर रहा है, कोई कोई और भी सफाई करने के घर में मेड्स होते हैं, कोई सफाई करने का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन हर एक कौन है, एक शुद्ध पवित्र आत्मा है। जैसे मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, हर रोल के पीछे एक शुद्ध पवित्र आत्मा है। अभी इसका रोल ये है, नेक्स्ट बर्थ में कोई और अच्छा रोल मिल सकता है, लेकिन हैं कौन हम सब आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई, एक परमात्मा की संतान है। इसी कॉन्शियसनेस के साथ हर एक के साथ व्यवहार में आना है, है ना। क्यों ये आपको पहले थोड़ा सा आत्मा का पार्ट क्लियर किया, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है कर्म, एक्चुअली कर्म किसको कहेंगे, कर्म माना क्या, जो काम करते हैं, जो हम कर्मेंद्रियों से करते हैं, चाहे आंख से, नाक से, कान से, मुख से, हाथों से, वो कर्म है। ये कर्म का स्थूल रूप है, लेकिन और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो हमारे हर विचार से ही कर्म शुरू हो जाता है। मान लीजिए मैं, कोई मेरे से ओहदे में बड़ा है, मैं उसको रिगार्ड दे रही हूँ, उसके आते ही अपने सीट से खड़ी हो गई, रिगार्ड दिया, लेकिन मन में बहुत सारी बातें चल रही है कि ये व्यक्ति तो ऐसा है, कभी किसी की बात नहीं सुनता, इसकी नेचर अच्छी नहीं है, ये गुस्सा करता है, ये बहुत अकड़ू है, किसी भी प्रकार की बातें आपके मन में आती हैं आपसे बड़ों के प्रति, चाहे एज में बड़ों के प्रति या औदों में बड़ों के प्रति। आप बाहर से तो रिगार्ड दे रहे हैं, उसके आते ही आपने उसको नमस्कार किया, अपनी सीट से खड़े हो गए, लेकिन मन में आपकी अगर फायरिंग चल रही है तो उसको कैसा कर्म कहेंगे, अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है? क्यों? क्योंकि एनर्जी कैसे फ्लो की, नेगेटिव एनर्जी फ्लो हो रही है ना, क्योंकि हमारे हर विचार के साथ एनर्जी फ्लो कर रही है। तो भले आप बाहर से रिगार्ड दे रहे हैं, लेकिन अगर अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, अंदर से आपके नेगेटिव विचार चल रहे हैं कि मैं तो इससे कितना भी छुट्टी मांगू मुझे छुट्टी नहीं मिलती है तो उसको नेगेटिव कर्म ही कहेंगे। इसलिए कर्म सिर्फ वो नहीं है जो हम अपने कर्मेंद्रियों से करते हैं, कर्म यहां से शुरू होते हैं, विचारों से शुरू होता है। अच्छे विचार शुरू हुए तो अच्छा कर्म शुरू हो गया, नेगेटिव विचार शुरू हुए तो नेगेटिव कर्म शुरू हो गया। इसलिए कोई कैसा भी करे, आपके साथ कोई कैसा भी बिहेव करे, लेकिन आपको अपने मन की भावनाएं, हमको अपने मन की भावनाएं हमेशा सामने वाले के प्रति शुभ और कल्याणकारी ही रखना है, उसको एक रोल की दृष्टिकोण से देखना है। कि उसका रोल है। अगर वो मेरे से बुरा व्यवहार कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, तो भी वो उसका रोल है। That soul is not aware of its internal values. लेकिन हम तो अवेयर है ना, हमको तो अवेयरनेस है कि हमारी इंटरनल वैल्यूज क्या हैं, पीस है, लव है, हैप्पीनेस है, उसको अवेयरनेस नहीं है। जैसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में जो मानसिक रोगी हैं वो कैसे भी बिहेव करते हैं, है ना, डॉक्टर को दो थप्पड़ भी लगा देंगे, होगा कि नहीं, है ना, कुछ पकड़ा होगा खींच लेंगे, कैसे भी बिहेव कर सकते हैं, लात मार सकते हैं, थप्पड़ मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मेंटली अनबैलेंस्ड है, बीमार है। ठीक है, तो आपका कोई अपना व्यक्ति हो सकता है, मान लीजिए आप डॉक्टर के रोल पे हैं और आपका पेशेंट ऐसे कर रहा है, या आपके घर में अपना ही कोई है, आपके घर में मतलब कनेक्शन में जिसको आप जानते हैं, जिसका जिसके साथ आपका स्नेह है, लेकिन वो मेंटली पेशेंट है, या मान लीजिए आप डॉक्टर हैं और कोई पेशेंट है, तो वो अगर आपको दो थप्पड़ भी मारेगा तो क्या आपको गुस्सा आएगा? आएगा नहीं आएगा, क्योंकि पता है आपको कि वो पेशेंट है। इंटरनली आप उससे नफरत करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो पेशेंट है। पेशेंट मीन्स वो कैसे भी बिहेव कर सकता है ना। तो इसी प्रकार वर्तमान समय ही दुनिया भी एक मेंटल हॉस्पिटल है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि स्वयं का और स्वयं के आंतरिक गुणों का ज्ञान नहीं है। किस प्रकार की बीमारी लगी हुई है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तनाव, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इस प्रकार के बीमारियों से ग्रसित है, उनको अवेयरनेस नहीं है सभी को, है ना। तो उनको अवेयरनेस नहीं है तो वो ऐसा बिहेव करेंगे, लेकिन मुझे तो अवेयरनेस है ना। कोई अगर विलन का रोल प्ले कर रहा है तो क्या मैं अपने हीरो रोल को छोड़कर मैं भी विलन बन जाऊं? नहीं ना। अगर मेरा हीरो रोल है तो मुझे हीरो का रोल ही प्ले करना है, और जो रोल है उसको बेस्ट प्ले करना है, है ना। यही है कर्मों का अवेयरनेस, कि कोई कैसा भी कर्म करे हमारे प्रति, लेकिन हम आत्मिक भाव में रहकर, सोल कॉन्शियस रहकर, हर एक के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना पूर्ण कर्म करें। क्योंकि कर्म का जो सिद्धांत है ये सभी को पता है। क्या सिद्धांत है कर्म का? अटल सिद्धांत, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, है ना। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर कर्म का रिजल्ट तो मिलना ही है। तो अगर कोई गलत कर्म करके गलत कर्म का खाता बना रहा है तो क्या मैं भी गलत कर्म करूं? नहीं, मुझे तो अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता बनाना है ना। और कर्म सिर्फ बाहर नहीं, ये हमेशा याद रखिए, कर्म यहां से शुरू हो रहा है, थॉट लेवल से। तो किसी ने मेरे से अगर बैड बिहेवियर किया और मैं यहां से उसके प्रति बाहर से मैं उससे छूटी हूं तो कुछ बोल नहीं रही हूं, लेकिन अगर मन से मेरे नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं तो भी नेगेटिव कर्म ही हो रहे हैं। तो कि कैसा भी करे मुझे क्या करना है? शुभ भावना पूर्ण कर। तो उसको उस समय सोल कॉन्शियस के दृष्टिकोण से देखना है कि ये भी आत्मा है और ये आत्मा अपना रोल प्ले कर रही है। तो इसमें दो बात होंगी। पहली बात, आपका कोई नेगेटिव कर्म का खाता जमा नहीं होगा। दूसरा, आपसे जो प्योर एंड पावरफुल वाइब्रेशन उसके प्रति जाएंगे। आपने अगर इस कॉन्शियसनेस देखा कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, वो गुस्सा कर रहा है लेकिन वो भी एक शांत स्वरूप आत्मा है, उसको अपनी नेचर का अवेयरनेस नहीं है तो गुस्सा कर रहा है, लेकिन है उसके अंदर भी शांति का गुण छिपा हुआ है। तो आपसे किस प्रकार की एनर्जी उसके पास गई? पॉजिटिव पीस के वाइब्रेशन गए। अगर आपने ये सोचा कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं और सामने वाला भी एक शांत स्वरूप आत्मा है, तो आपसे किस प्रकार के वाइब्रेशन गए? शांति के वाइब्रेशन गए। तो आपके शांति के वाइब्रेशंस, अगर उसमें गुस्से का संस्कार भी है, लेकिन आपके शांति के वाइब्रेशंस उसको शांत रहने में मदद करेंगे। और ऐसा अगर रोज चलता रहेगा तो कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि वो व्यक्ति भी शांत हो जाएगा आपकी शांति के वाइब्रेशंस से। और अगर कोई गुस्सा कर रहा है और मैं सोच रही हूँ ये तो व्यक्ति गुस्सा करता है, चिड़चिड़ाता है, हमेशा मुझे परेशान करता है, एक तो आपका नेगेटिव कर्म का खाता जमा हुआ, जो संकल्प किया वो पहले किसने एक्सपीरियंस किया? पहले तो आपने एक्सपीरियंस किया नेगेटिव संकल्प को, नेगेटिव वाइब्रेशन पहले आपके पास पहुंचे, फिर वो नेगेटिव वाइब्रेशन उसके पास भी पहुंचेंगे, तो उसकी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो बढ़ेगी या कमेगी? उसका गुस्सा बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, है ना? तो ये संसार में ऐसे ही होता है कि कोई कुछ गलती करता है तो जब कलेक्टिवली लोग फिर उसी के बारे में वैसा ही सोचते हैं तो उसकी नेगेटिविटी और बढ़ जाती है। तो वहां पर क्या करना चाहिए? कोई कुछ भी करे, हम अपने श्रेष्ठ स्वमान में, श्रेष्ठ स्वभाव में रहकर उनको भी श्रेष्ठ वाइब्रेशंस दें। इससे हमारा तो पॉजिटिव कर्म का खाता जमा हो गया और हमारे से जो वाइब्रेशंस चाहेंगे इससे उनके भी स्वभाव में परिवर्तन आएगा। ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है संसार में। आज अन्न दान करने वाले, वस्त्र दान करने वाले, स्थूल सेवा करके पुण्य जमा करने वाले बहुत हैं, लेकिन जो आज लोगों को सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है शुभ भावना, शुभ कामनाओं की आवश्यकता है। लोगों को पता है गुस्सा करना ठीक नहीं है, लेकिन गुस्सा करते हैं क्योंकि आत्मा में वो शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता गुस्सा करना गलत है, पता है लेकिन गुस्सा कर लेते हैं क्योंकि आत्मा में शांत रहने की शक्ति नहीं है। लोगों को पता होता है ये कर्म गलत है लेकिन कर लेते हैं क्योंकि आत्मा में वो शक्ति नहीं है सही राह में जाने के लिए। तो लोगों को अपनी शुभ भावना, शुभ कामनाओं की शक्ति देना, ये वर्तमान समय सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा। और ये शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? अपने ही सराउंडिंग से करेंगे। है आवश्यकता पूरे विश्व को, लेकिन कम से कम हम अपने सराउंडिंग में, अपनी फैमिली में, अपने कर्म क्षेत्र में जो लोग हैं उनसे तो शुरुआत कर सकते हैं ना। चैरिटी बिगिंस एट होम, घर के फैमिली मेंबर्स, किसी के अंदर कोई, हमारे अंदर तो खुद भी है, होता है कुछ ना कुछ नेगेटिव संस्कार, हमारे साथ रहने वालों के भी अंदर किसी के अंदर के कोई ना कोई बैड हैबिट्स होती है, लेकिन हमको उनको बार बार ये नहीं बोलना है कि आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, आप ये नहीं करना चाहिए। हमको उनको अपनी शुभ भावना, शुभ कामना की शक्ति देनी है, ब्लेसिंग्स देने हैं। यही मेडिटेशन है। राजयोग मेडिटेशन सिर्फ ये नहीं कि आप बैठ गए और परमात्मा को याद किया और शक्ति भरी, इसलिए राजयोग को कर्म योग भी कहते हैं। कर्म करते समय सोल कॉन्शियस होकर हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना देते हुए, उनको ब्लेसिंग्स देते हुए कर्म करना, ये भी राजयोग है, इसलिए इसको कर्म योग कहते हैं। समझ रहे? कर सकते हैं, कर सकते हैं, करेंगे? कौन कौन करेंगे? करेंगे सभी। तो अभी हम थोड़ा समय अपने आप से ये प्रॉमिस करेंगे, है ना। सिट स्ट्रेट, एक बार थोड़ा बैठ जाइए सीधे, और जैसा हमको बनना है अभी से हमको वो अपने आप को वैसा विजुअलाइज करना है, क्योंकि हमारे संकल्पों में ही सबसे बड़ी शक्ति है। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे, है ना। तो चलिए, हमने पास्ट की यात्रा को देखी थी कि हमारा पास्ट कैसा था, यहाँ पर दो तीन दिन को देखा कि अभी कैसा है, फिर हम फ्यूचर को अभी देखेंगे, ठीक है। अब अपने मन से अपने फ्यूचर को विजुअलाइज कीजिए कि यहाँ 3 दिन की यात्रा पूरी करके आप वापस से अपने घर अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, अपने आप को विजुअलाइज कीजिए अपने फैमिली में, फैमिली मेंबर्स के साथ। अपने को वर्क प्लेस में जाते हुए देखिए, जहां आपका कर्म क्षेत्र है वहां अपना रोल प्ले करने जा रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल सोल कॉन्शियस होकर जा रहे हैं। घर में फैमिली मेंबर्स के साथ सोल कॉन्शियस होकर बात कर रहे हैं सभी से, फुल्ली सोल कॉन्शियस 100% लवफुल पीसफुल होकर सभी से व्यवहार में आ रहे हैं, और आपसे शांति के प्रेम के वाइब्रेशंस आपके फैमिली में हर मेंबर के पास जा रहे हैं। और आपके वाइब्रेशंस से आपके फैमिली में जो मेंबर्स हैं, अन्य आत्माएं हैं जो आपके साथ किसी न किसी संबंध का रोल प्ले कर रहे हैं, कोई हस्बैंड का रोल, कोई पत्नी का रोल, कोई बच्चे का रोल, या किसी और संबंध का रोल प्ले कर रहे हैं, आपके सोलफुल वाइब्रेशन से, शांति के वाइब्रेशन से उनमें भी शांति की शक्ति जागृत हो रही है। आपके प्रेमपूर्ण व्यवहार से वो भी प्रेमपूर्ण बनते जा रहे हैं। आपकी खुशनुमा व्यवहार से उनमें भी खुशी की तरंगे फैल रही है, वो बहुत खुश हो रहे हैं। फिर स्वयं को वर्क प्लेस पे देखिए, जहां आपका कर्म क्षेत्र है, वहां पे भी आप अपने कलिक से अपने स्टूडेंट्स से और दूसरे स्टाफ मेंबर से सोल कॉन्शियस होकर वार्तालाप कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। अपने स्वधर्म में स्थित होकर शांति की, खुशी की, प्रेम की तरंगे अपने कर्म क्षेत्र में भी सभी को फैला रहे हैं। और रिटर्न में उनको भी शांति की, खुशी की, प्रेम का अनुभव हो रहा है, और उन सभी में भी परिवर्तन आ रहा है। आपको देखकर, आपको व्यवहार को देखकर उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहा है। बहुत सारी बातें आपको अब कहनी नहीं पड़ रही है, आपको देखकर वो सीख रहे हैं, आपको देखकर वो बदल रहे हैं। रिलैक्स। विजुअलाइज किया सभी ने? अब जैसा विजुअलाइज किया वैसा ही रोल प्ले करेंगे ना, आप सोल कॉन्शियस रोल प्ले करेंगे, है ना। सोल कॉन्शियस होकर अपने हर रोल को, है ना, द बेस्ट प्ले करेंगे। जैसे किसी ड्रामा में भी अगर किसी बहुत अच्छे एक्टर को एक छोटा सा भी रोल मिलेगा ना तो उसको बेस्ट प्ले करेगा। अगर अमिताभ बच्चन को भिखारी का रोल भी दिया जाए तो उस फिल्म में बाकी सभी को छोड़कर लोग भिखारी को ही देखेंगे, है कि नहीं। क्योंकि अगर एक्टर अच्छा है तो उसको कोई भी रोल मिले वो द बेस्ट रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर एक्टर एक्सपीरियंस्ड नहीं है तो अगर उसको बड़े से बड़ा रोल भी दिया जाए तो उसमें वो चार्म नहीं आएगा, एग्री है कि नहीं। तो इसलिए जो भी रोल निकल रहे हैं आप लोग, जो भी रोल आप लोग आपको दिया गया है, है ना, जो भी रोल परमात्मा ने हम सभी को दिया है उसको द बेस्ट प्ले करना है। और द बेस्ट प्ले करने के लिए कैसे रोल प्ले करना है, सोल कॉन्शियस होकर रोल प्ले करना है, है ना। सोल कॉन्शियस होकर आत्मिक स्थिति में रहकर अपने ट्रू नेचर को, शांति, पीस, हैप्पीनेस, लव, इसके स्वरूप में रहकर रोल प्ले करना है। ठीक है, यहां से जाने के बाद ऐसा ही करेंगे ना। ऐसा करने के लिए रोज आत्मा को, पहले आत्मा रूपक बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा चार्ज करेंगे तो फिर वो दिन भर फंक्शन करेगा, है ना। तो आप में से कौन कौन पहले से मेडिटेशन करते आए हैं, यहाँ आने से पहले भी करते थे, करते सेंटर पे जाते हैं, जाते हैं रेगुलर। 7 days का जो कोर्स होता है वो सेंटर पे किस किसने किया है, किया है आप लोगों ने। तो आप लोगों को तो बेसिक चीजें तो पता ही होगी, जिन्होंने नहीं किया तो आपके कनेक्टेड सेंटर पे जाकर 7 दिन का कोर्स अवश्य कीजिएगा, है ना। एक एक घंटा, 7 days मीन्स 1 hour a day, एक एक घंटा रोज कीजिएगा। क्योंकि रोज करेंगे तो फिर आत्मा की बैटरी, पहले तो 7 days कोर्स करेंगे तो आपको मेडिटेशन का और क्लैरिफिकेशन मिलेगा। इसमें और बहुत सारे चैप्टर हैं, कर्म फिलॉसफी का तो है ही, पर ड्रामा का है, जन्म मरण का चक्र कैसे है, वो सभी के बारे में क्लैरिटी आएगी। तो बहुत सारी बातों पे आपके थॉट्स बदल जाएंगे, आपको पॉजिटिव रहना इजी होगा, है ना, सोल कॉन्शियस रहना इजी होगा। और साथ में 7 days का कोर्स पूरा करने के बाद रोज मेडिटेशन की प्रैक्टिस और रोज परमात्मा के महावाक्य सुनना, है ना। 7 days इज नॉट द एंड, इट्स द बिगनिंग। 7 दिन में बिगनिंग है, मतलब वो आपका जस्ट फाउंडेशन डाला गया, अंडरस्टैंडिंग आ गई। लेकिन रोज आत्मा को चार्ज कैसे करेंगे, रोज मेडिटेशन प्लस परमात्मा के महावाक्य, जो यहाँ पे हम जिसको मुरली कहते हैं, है ना, उसको रोज सुनना। क्योंकि जैसे शरीर के लिए आपको भोजन की आवश्यकता होती है, अगर एक दिन भी नहीं खाएंगे तो थोड़ा बहुत तो कमजोरी फील होती है ना। तो ऐसे ही आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए, आत्मा वही कर्म करे जो वो चाहती है, है ना, वही कर्म करे, है ना। जैसे वो जीवन कैसा सुंदर होगा कि हम जो चाहेंगे वैसे ही विचार क्रिएट होंगे, मुख से जो बोल निकलना चाहिए वैसे ही बोल निकलेंगे, जैसा हमारा सभी के साथ बिहेवियर होना चाहिए वैसा ही व्यवहार होगा, तो जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। तो ऐसा जीवन बनाने के लिए, वो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर अपने अंदर डेवलप करने के लिए रोज आत्मा रूपक बैटरी को चार्ज तो करना पड़ेगा, थोड़ा समय तो निकालना ही पड़ेगा। थोड़ा समय मेडिटेशन वो भी चाहिए, प्लस परमात्मा के महावाक्य, वो आत्मा का भोजन है। रोज सुनेंगे सुबह सुबह, सभी सेंटर पे सुबह सुबह रोज मुरली क्लास होता है जिसमें परमात्मा के महावाक्य पढ़े जाते हैं। आप अपने लोकल सेंटर पे कांटेक्ट करके सारे आप भी रोज जाकर उसको अटेंड कर सकते हैं। अगर सेंटर पे जाके अटेंड करते हैं तो वो बेस्ट है, जैसे स्कूल में बच्चे रोज आके कॉलेज में पढ़ना और डिस्टेंस एजुकेशन में डिफरेंस है ना। तो रोज जाके पढ़ना, वहाँ के वाइब्रेशंस में उस संगठन में बैठ के पढ़ने का अलग ही एनर्जी है उसकी। कभी आपका पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आजकल यूट्यूब में भी मुरली तो मिलती है, लेकिन पहले आप 7 days का कोर्स पूरा करो, फिर मुरली आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे उसको, है ना। तो 7 दिन का कोर्स पूरा करने के बाद आप सेंटर पे जाएं, रोज वहाँ पर बैठ के मुरली सुने, है ना। स्टूडेंट लाइफ हो सकता है टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन लाइफ के लिए तो हम सभी स्टूडेंट है ना, हमेशा के लिए स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर ये भी गॉडली यूनिवर्सिटी है, परमात्मा का ये विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हम सभी एक ही कॉलेज में पढ़ाई पढ़ते हैं सभी एक ही कॉलेज में एक ही पढ़ाई है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट लाइफ अपनी चालू करनी है, टीचर का रोल प्ले करते हुए भी हमेशा ये बुद्धि में होना चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं, हमको सीखना है और अच्छे से अच्छा बनना है, मनुष्य से देवी देवता जैसा बनना है। तो ये जर्नी है ना, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए ये यात्रा है। कर्म के बारे में कभी कभी ये सवाल भी आते हैं, कभी कभी आपको भी आता होगा कि कभी कभी हम किसी के प्रति बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं, हम उसकी भलाई कर रहे होते हैं, हम उसको बेनिफिट कर रहे होते हैं, लेकिन रिटर्न में हमको रिस्पॉन्स उल्टा मिलता है। होता है कभी ऐसा? आजकल लोग कहते हैं आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है, है ना। जो अच्छे करते हैं उसके साथ गलत ही होता है, वो बेचारे तकलीफ में रहते हैं, और जो गलत काम कर रहे होते हैं वो बड़े आराम से ऐशो आराम से रहते हैं। ऐसा ऐसे ही होता है? आप लोग क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? ऐसा है, जो अच्छाई के राह पे चल रहे हैं वो बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करते हैं, और जो गलत काम कर रहे हैं वो बड़े ऐशो आराम से, ऐसा है? दिखने को तो ऐसा ही है, दिखने को ऐसा है, लेकिन अंदर की कर्म फिलॉसफी समझेंगे तो आपको कुछ गलत नहीं लगेगा। कर्म एक साइकिल है, कर्म साइकिल कहते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कर्म का अकाउंट हमारे बैंक बैलेंस की तरह है। जैसे अगर बैंक में आपका बहुत सारा डिपॉजिट है तो उस हिसाब से फिर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है ना। और अगर आपने लोन लेकर रखा है तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट करना पड़ेगा, है ना। नेगेटिव खाता भी होता है, पॉजिटिव बैलेंस भी होता है, नेगेटिव बैलेंस भी होता है, दोनों तरह का होता है ना। तो कर्म भी ऐसा है। आप जब जिन्होंने 7 डेज का कोर्स किया है उनको तो पता ही होगा, जिन्होंने नहीं किया जस्ट मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताती हूँ कि इस वर्ल्ड ड्रामा के साइकिल में हम सभी आत्माएं अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन ये रोल सिर्फ एक जन्म का नहीं है, है ना। हमारा बर्थ साइकिल है, और आप डिटेल में जब आप उसको समझेंगे तो पूरे 5000 ईयर्स के साइकिल में हम 84 बर्थ्स लेते हैं, 84 जन्म, मैक्सिमम 84 जन्म, मिनिमम एक जन्म भी हो सकता है, लेकिन हर आत्मा का जन्म का साइकिल होता है। तो सिर्फ ये एक जन्म नहीं है, कर्म हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। आप देखेंगे कोई व्यक्ति 100 साल तक भी एकदम हेल्दी है, तंदुरुस्त है, और कोई बच्चा जन्म होते ही बीमारियां हैं उसको। ऐसा क्यों? पिछले जन्म के कर्म का कैरी फॉरवर्ड है ना। अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, एक बच्चा जन्मते ही बीमारी है और कोई 100 साल तक भी तंदुरुस्त है। क्यों? कर्म का खाता, पास्ट कर्म का वो रिजल्ट है। जब कर्म को समझते हैं बहुत सारी बातों को स्वीकार करना भी इजी हो जाता है। कई बार सवाल आता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो उसको बहुत अच्छा करने के प्रयास कर रही हूँ लेकिन वो तो मेरे साथ बहुत बैड बिहेवियर कर रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चों में भी, स्टूडेंट में या फिर लाइफ में भी, कोई बहुत एफर्ट करके भी उनको सफलता नहीं मिलती, और कई बिना मेहनत के भी सफलता मिल जाती है। तो फिर हम क्या कहते हैं कि इसके भाग्य ने साथ दिया, भाग्य ने साथ दिया। तो अब कर्म के साथ भाग्य भी आता है, तो भाग्य क्या है फिर? भाग्य क्या है, क्या है बताइए? पिछले कर्म का रिजल्ट है ना, पास्ट बैंक बैलेंस है वो, ठीक है ना। लेकिन उस भाग्य को भी कैसे क्रिएट किया गया? कर्म करके ही क्रिएट किया गया ना। अगर इस जन्म में उसको बिना एफर्ट से भी कोई प्राप्ति हो रही और हम ये मानते हैं कि उसके भाग्य से मिला, लेकिन उसने ये भाग्य बनाया कैसे? श्रेष्ठ कर्म के आधार से ही बनाया है ना। तो अभी हमारी जो स्थिति है वो हमारे पास्ट कर्मों का रिजल्ट है, पास्ट कर्म का रिजल्ट है। चाहे हमारे साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है या नेगेटिव भी हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है वो हमारे पास्ट कर्मों का रिजल्ट है। और आगे हमारी जो स्थिति होगी वो वर्तमान समय का रिजल्ट होगी। अगर पास्ट में हमने अच्छे कर्म करके अच्छा खाता जमा किया है तो अभी हम सब कुछ ठीक है, और अगर पास्ट में कुछ नेगेटिव कर्म का खाता है, हर एक का है क्योंकि हम सभी अनेक जन्मों से बॉडी कॉन्शियसली रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत सारे विकर्म किए हैं, तो उसका रिजल्ट हम नेगेटिव कर्म का खाता भोग रहे हैं। लेकिन अगर फिर से अभी हम नेगेटिव करेंगे तो आगे क्या होगा? फिर से नेगेटिव कर्म का खाता, फिर से दुख भोगना पड़ेगा। तो अभी हमको क्या करना है? अभी श्रेष्ठ कर्म के खाते को जमा करेंगे तो भविष्य में फिर सुख की प्रारब्ध मिलेगी, है ना? तो इस बात को ध्यान रखना है कि अभी इस संसार में जिसका जैसा भी रोल है, हो सकता है कोई गलत कर्म कर रहा है लेकिन आराम से है, तो अगर वो वर्तमान समय खुश आराम से है तो वो उसके पास्ट कर्म का फल है। वो समझ रहे? अंडरस्टूड? वो उसके पास्ट कर्म का फल है। लेकिन अगर वो वर्तमान समय का नेगेटिव कर्म का खाता जमा कर रहा है तो उसका कॉन्सिक्वेंस फिर उसको आगे मिलेगा। और हम अगर बहुत सारा एफर्ट कर रहे हैं लेकिन अभी हमको उसकी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है, अभी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है, तो पास्ट का बैलेंस इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन अभी अगर हम श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा कर रहे हैं तो उस जमा से हमको भविष्य प्राप्ति का अनुभव होगा ही। ये सत्य है, कर्म की गति अटल है, कोई इसको बिगाड़ नहीं सकता। कर्म का फल मिलेगा ही, चाहे इस जन्म में मिले या फिर अगले जन्म में मिले, लेकिन मिलेगा ही। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का फिर आप कहेंगे कि भविष्य में मिलेगा तो उसका क्या भरोसा, फिर हम यहाँ क्यों श्रेष्ठ कर्म करें? लेकिन भविष्य में आपको जो श्रेष्ठ प्राप्ति होगी, लेकिन प्रेजेंटली भी सबसे बड़ी प्राप्ति जो होती है श्रेष्ठ कर्म करने से, आपको तुरंत ही खुशी का अनुभव होता है। ये आपका वर्तमान प्राप्ति है, और फिर भविष्य प्राप्ति तो फिर आपको मिलेगी श्रेष्ठ कर्म के आधार पर, सोल कॉन्शियस कर्म के आधार पर। सबसे पहला तो आत्मा के जो गुण हैं वो पहले हम एक्सपीरियंस करते हैं, है ना? फिर तो उसका रिजल्ट तो आगे तो मिलना ही है। इसलिए कर्म पर ध्यान रखना है। कोई अगर हमारे, जिसको कई बार ऐसा भी एग्जांपल दिया जाता है कि कोई अगर नेगेटिव कर्म कर रहा है, हमारे पास ब्लैक बॉल फेंक रहा है, तो भी आपको क्या करना है? अपने व्हाइट बॉल से ही फेंकने, अच्छे कर्म करने। एक समय आएगा कि वो धीरे धीरे उसका भी ब्लैकिशनेस जो है ना वो मिट जाएगा, ठीक है? तो कर्म का ये है कि कर्म का साइकिल होता है ना? कई बार हर कर्म का फल रिजल्ट हमको तुरंत दिखाई नहीं देता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर हमारे पास बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे सामने आता है, है ना? इसलिए अपने श्रेष्ठ कर्म पर, श्रेष्ठ धर्म पर। श्रेष्ठ धर्म क्या है? शांति, प्रेम, खुशी, ये हमारा श्रेष्ठ धर्म है। लोग आज दुनिया में एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम ये धर्म कहते हैं, लेकिन हमारा वास्तविक स्वधर्म क्या है? ये जो दुनिया में धर्म है ये सब देह अभिमान के धर्म है, बॉडी कॉन्शियसनेस के धर्म है। देह भान के लेवल पे सोचते हैं कि वो हिंदू फैमिली में जन्म हुआ तो वो हिंदू है, मुस्लिम में जन्म हुआ तो मुस्लिम है, ये देह भान के धर्म है। लेकिन हमारा वास्तविक स्वधर्म क्या है? हम शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ये हमारा वास्तविक स्वधर्म है। और इसी स्वधर्म में स्थित होकर हम कर्म करते हैं, तो हमारा जो पास्ट में अगर कुछ नेगेटिव खाता है, जैसे अगर आपने बैंक से बहुत ज्यादा लोन लिया है तो फिर आपको डिपॉजिट भी ज्यादा करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही हमारा अगर पास्ट कर्म का खाता नेगेटिव है जिसका रिजल्ट हमको कभी भोगना पड़ रहा है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट भी करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, फिर पॉजिटिव कर्म का खाता जमा होगा। तो हम अगर श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा करते हैं तो हम जो परमात्मा ने हमको जो लक्ष्य भी दिया है कि मनुष्य से देवता बनने का, और साथ में इस भारत को, विश्व को, खास भारत और सारे विश्व को हम फिर से सतयुगी दुनिया, स्वर्णिम दुनिया बना सकते हैं। और कर्म में विशेष करके ये ध्यान रखना है जो बात हमने पहले से डिस्कस की, कर्म सिर्फ वो नहीं है जो बाहर दिखाई देता है। कर्म कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से, विचारों के लेवल से। हर एक के प्रति श्रेष्ठ शुभ भावना, प्रेम पूर्ण भावना, शांति पूर्ण भावना कर्म करना, यही श्रेष्ठ कर्म है। कैजुअल हो जाते हैं। वो अटेंशन तो हम बाहरी रूप से रख लेते हैं। बाहरी रूप से तो आपने रख लिया कि हाँ, इस गुस्सा करेगा मतलब मुझे थोड़ा सोच समझ के इसे बात करना, ये बात कह रहे हैं ना, यही बात आप कह रहे हैं ना। अच्छा, हम अच्छे हैं तो लोग फिर हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करते हैं। हाँ, लेकिन इसमें भी कर्म की फिलॉसफी तो काम कर रही है ना, काम तो कर रही है ना। तो वो हर समय फिर ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे जब लोगों को फिर हमारी अच्छाई समझ में आने लगती है तो फिर हमारी अच्छाई दूसरों तक भी फिर ट्रांसफॉर्म होती है। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य की आवश्यकता भी होती है ना। एक तो उनकी, देखिए उनके हमारे प्रति विचार, ये सभी के फिर ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों के विचार ऐसे होते हैं, सभी ऐसे नहीं होते हैं। जैसे जो अच्छाई को पहचानने वाले हैं वो आपसे अच्छा ही बिहेव करेंगे, है ना। लेकिन जो अच्छाई का महत्व नहीं रखते हैं वो ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी अच्छाई बना कर रखते हैं तो एक समय आता है फिर धीरे धीरे आपकी अच्छाई से वो सीखने लगते हैं, सीखने लगते हैं। क्योंकि वो वाइब्रेशंस भी काम करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मुख से कह दिया, कर दिया, लेकिन आपके जो विचार हैं, आपके विचार भी फिर उनके प्रति श्रेष्ठ होना चाहिए। वो चाहे कैसा भी आपसे वर्ताव करे, लेकिन आपके विचार उनके प्रति श्रेष्ठ सम्माननीय होना चाहिए और रहम वाले विचार होना चाहिए। जैसे मैं कह रही थी ना कि अगर आप डॉक्टर हैं, कोई मेंटल पेशेंट है, तो वो कैसा भी व्यवहार करे, डॉक्टर को पता है कि ये पेशेंट है तो वो पेशेंसली ही बिहेव करेगा। तो हमको भी पेशेंस के साथ बिहेव करना है, शुभ भावना शुभकामनाओं के साथ कर्म करने हैं। और कोई, तीन दिन के अंदर आपके मन में कोई प्रकार सवाल आया हो तो सभी खुश हैं, संतुष्ट हैं, और इसको आगे हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जिन्होंने कोर्स नहीं किया है और जाने के बाद 7 दिन का कोर्स करेंगे, वो हाथ उठाइए, करेंगे, पक्का जाएंगे। और उसके बाद फिर आप मुरली को भी कंटिन्यू कीजिए, परमात्मा के महावाक्य जो रोज सेंटर पे सुनाए जाते हैं, परमात्मा के महावाक्य, उनको भी रोज सुनना है। रोज सुनकर अपनी आत्मा रूपक बैटरी को चार्ज करना है। पहले खुद बदलेंगे, स्व परिवर्तन करना है, और हम खुद बदलेंगे तो ये जग भी बदल जाएगा, है ना। ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा खुद को बदलना ही सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि हम बदलते हैं तो एक हिस्सा बदल जाता है और हमको देखकर फिर और भी बदल जाते हैं, है ना। तो अभी फिर से अपने मन में यहाँ से एक प्रॉमिस लेकर, है ना, अपने आप से एक वायदा करेंगे हम, और वायदा को लेके चलेंगे, परमात्मा का भी थैंक्स करेंगे। अपने मन में फिर से वही विजन लाएं कि यहाँ से आप अपने अंदर बहुत सारी ज्ञान के रतन, गुणों के रत्न, शक्तियों का खजाना आपको यहां मिला है। जो स्वयं परमात्मा पिता ने आपको दिया है, महसूस करें कि आप उस ज्ञान के रत्नों को, गुण के मोतियों को और शक्तियों के खजानों को अपने साथ समेट कर अपनी झोली भरपूर करके जा रहे हैं, सभी को बांटने के लिए। अपने रोल को, अपने कर्म को श्रेष्ठ सुखमय बनाने के लिए और अपने आप को देखें कि आप अपने कर्म क्षेत्र पर पहुंचकर वरदाता परमपिता परमात्मा की संतान, आप भी दाता बनकर सभी को ज्ञान के रत्न, गुणों के मोती और शक्तियों का खजाना सभी को बांट रहे हैं। आपके परिवार में अन्य सदस्यों को कर्म क्षेत्र में आपके साथ रोल प्ले करने वाली अन्य सभी आत्माओं को आप अपने विचारों से, अपने बोल से, मधुर बोल से और श्रेष्ठ कर्म के आधार से सभी को गिफ्ट दे रहे हैं। ज्ञान के रत्नों का गिफ्ट, गुणों के मोतियों का गिफ्ट और शक्तियों का खजाना सभी को बांट रहे हैं। इससे आपका रोल और भी स्पेशल हो गया है। आपका रोल बहुत ही सुंदर सुखमय हो गया है, सभी को सुख देने वाले बन गए हैं, सुखदाता बन गए हैं। विचारों से भी, वाणी से भी और कर्म से भी सभी के प्रति सुखदायी बन गए हैं और इतने सुंदर रोल को देखकर अन्य आत्माएं भी आपसे प्रेरणा ले रही हैं। आपसे सीखकर वो भी अपने विचारों को, वाणी को, कर्म को बदल रहे हैं। और ऐसे ही आप स्वयं को बदलकर विश्व को बदलने के माध्यम बन गए हैं। आंखें खोलें, सामने परमात्मा का ज्योतिर्बिंदु स्वरूप का चित्र है और उनके माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का चित्र है, देखें और परमात्मा पिता का दिल से धन्यवाद करें। मेरे प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा, आपका लाखों लाखों धन्यवाद है कि आपने मुझे ये अवसर दिया अपने रोल को और सुंदर सुखमय बनाने के लिए। आपने मुझे अवसर दिया, ज्ञान गुण शक्तियों से आपने मुझे भरपूर किया। प्यारे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी संतान आपकी जैसा बनकर सारी दुनिया को बदलने में आपकी मदद करूंगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू।